नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और महारानी जेतसुम पेमा वांगचुक दो दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हॉर्नबिल महोत्सव के 25 वर्ष पूरे होने पर नागालैंड के लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कृषि वैज्ञानिकों से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए वर्तमान समय के अनुरूप नई योजनाएं बनाने का आह्वान किया है। दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन पर केबल की चोरी और क्षति के कारण ट्रेन सेवाएं आज प्रभावित रही है। महिला क्रिकेट में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। और अब समाचार विस्तार से। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और महारानी जेतसुम पेमा वांगचुक दो दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। यात्रा के दौरान भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। डॉ जयशंकर और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे। भारत और भूटान के बीच मैत्री और सहयोग के प्रगाढ़ संबंध है। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए केवल उपभोक्ता बाजार नहीं बनना चाहता। आज नई दिल्ली में भारत के वैश्विक उदय को बढ़ावा विषय पर भारत एट 100 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि वैश्विक समूह और उद्योग न केवल अपने बाजार के लिए बल्कि अपनी प्रतिभा के लिए भी भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत चीन के साथ स्वस्थ व्यापार संबंध चाहता है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रूस से आयात के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में यूरोपीय देश ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ एक विश्वसनीय भागीदार है, जिसकी भारत में कमी है। उन्होंने इस बात पर महत्व दिया कि पिछले कुछ वर्षों में रूस का व्यापार पश्चिम से हट गया है। भारत फार्मा, समुद्री और कृषि में अपने व्यापार में सुधार करने के लिए रूसी नेतृत्व पर दबाव डाल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हॉर्नबिल महोत्सव के 25 वर्ष पूरे होने पर नागालैंड के लोगों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इस महोत्सव में भाग लें और नागा संस्कृति की विविधता का अनुभव करें। उन्होंने इस वर्ष के महोत्सव के दौरान अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधनीयता पर ध्यान केंद्रित किए जाने पर प्रसन्नता भी व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कृषि वैज्ञानिकों से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग जैसी चुनौतियों से बचाने के लिए वर्तमान समय के अनुरूप नई योजनाएं बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कृषि और किसानों के क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी, रिमोट सेंसिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। आज सुबह भुवनेश्वर में उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों को देश के लिए नई योजनाएं बताते समय मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण, मृदा संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ दशकों में कृषि के क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि हासिल की है और यह अन्य देशों को खाद्यान्न और कृषि उपकरण निर्यात कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत कृषि उत्पादन को और बढ़ा सकता है क्योंकि उसके पास कृषि अनुकूल जलवायु, कुशल जनशक्ति, उपजाऊ भूमि और नवीनतम तकनीक है। उन्होंने कहा कि कृषि और किसानों की बेहतरी से ही देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीतने पर पुरुष जूनियर हॉकी टीम को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस जीत को भारतीय हॉकी के लिए ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने युवा खिलाड़ियों के बेजोड़ कौशल, अटूट धैर्य और अविश्वसनीय टीम वर्क को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री ने युवा चैंपियनों को शुभकामनाएं दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में नवनिर्मित सड़क सह रेल वाहन का निरीक्षण किया। श्री वैष्णव ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि यह रेल मशीनरी मोटर ट्रॉली सुविधा के आधुनिकीकरण पर रेलवे कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद बनाई गई है। उन्होंने कहा कि ट्रैक के रखरखाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहले की मोटर ट्रॉली सुविधा दशकों पुरानी थी। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार दूरदर्शी नेता डॉ. भीमराव अंबेडकर के मूल्य और नैतिकता की रक्षा तथा वंचितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मेघवाल ने बताया कि 2017 में नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना जैसी योजनाओं और पहलों के माध्यम से दुनिया को श्री अम्बेडकर के योगदान और आदर्शों से अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर न केवल सामाजिक सशक्तिकरण के नेता थे बल्कि उन्होंने भारत के वित्तीय ढांचे की नींव भी रखी। उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में मदद की। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर केबल की चोरी और क्षति के कारण ट्रेन सेवाएं आज प्रभावित रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने कहा है कि मोती नगर और कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशनों के बीच कुछ शरारती तत्व द्वारा कथित तौर पर केबल को क्षतिग्रस्त करने के बाद द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली तक चलने वाली मेट्रो लाइन प्रभावित हुई। परिमाण स्वरूप इस खंड में ट्रेनों को विनियमित किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप ट्रेनों की भीड़ हो गई है और सेवाओं में कुछ देरी हो रही है। DMRC ने आश्वासन दिया कि ब्लू लाइन के बाकी हिस्से पर सामान्य ट्रेन सेवाएं उपलब्ध है। राज्यसभा में आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा फिर से शुरू हुई। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, बिक्री, निर्यात या आयात को विनियमित करने और विमान संचालन की सुरक्षा के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के शंभु शरण ने कहा कि विमानन क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 थी जो 2024 में बढ़कर 157 हो गई है। श्री शरण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई है। सरकार ने आज तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में 2 स्टार्टअप को मंजूरी दी है। तकनीकी वस्त्रों में महत्वाकांक्षी नव प्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान ग्रेट योजना के तहत लगभग 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। स्वीकृत स्टार्टअप परियोजनाएं सतत वस्त्रों और चिकित्सा वस्त्रों के प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति EPC की 9वीं बैठक के दौरान समिति ने तकनीकी वस्त्रों में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 6 शिक्षा संस्थानों को लगभग 14 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। शिक्षण संस्थानों को तकनीकी वस्त्र के विभिन्न क्षेत्रों और अनुप्रयोगों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आज दोपहर 1 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ इलाकों में ये 200 को पार कर गया है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अगले 2 दिनों में रात और सुबह के दौरान धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में छोटे और मध्यम उद्यमों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना की है। कल मॉस्को में एक निवेश मंच को संबोधित करते हुए श्री पुतिन ने रूस के आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के साथ इसकी समानता बताते हुए भारत की आर्थिक पहल, विशेष रूप से मेक इन इंडिया पहल को महत्व दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत के नेतृत्व ने अपने हितों को प्राथमिकता देने की नीति पर ध्यान केंद्रित किया और भारत में विनिर्माण संचालन स्थापित करने के लिए रूस की तत्परता व्यक्त की। श्री पुतिन ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया। उन्होंने सदस्य देशों से अगले साल ब्राजील में आगामी शिखर सम्मेलन के दौरान साझेदारी के लिए प्रमुख क्षेत्रों का आकलन करने का आग्रह किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।